जयधवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो रोये सौवसाऊणं कवियगणगायिकं मम भवियजनानन्दकारिणं वीरम् क्रमियूणभरिस्सामो यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीयोषभ आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम दर्शन मोक्ष सपना का अर्थाधिकार देख रहे हैं और पृष्ठ संख्या है अपनी अभी 27। दर्शन मौखिक सपना संबंधी अपनी चर्चा चल रही है। ये जो बात आई थी कि तीर्थंकर केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उस पर अभी ये अरविंद भाई ने कुछ रेफरेंसेस लाए हैं धवला भाग 6 पृष्ठ 247 पर और श्लोक वार्तिक में 2, 1, 3, 2, 20, 64 ये जो नंबर लिखा है वहाँ ऐसी कोई इन्हें बिना इनके भी प्राप्ति होती है इसकी चर्चा आ गई। नहीं वो कहते कि अन्य जीवों के भी हो सकता है। केवली या तीर्थंकर वही तो उसी की बात है, परंतु भी जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला वैदिक समय दृष्टि में जिसकी सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति है, अभी जो दूसरे तीसरे नरक से आते हैं तो उनके लिए वो कंडीशन जरूरी नहीं है। नहीं होते उनके तो आपस में मिलना कभी होता ही नहीं, मिलना ही नहीं होता। बस समोचरण में अन्य भी केवली और उनकी दिव्य ध्वनि भी है, उनके भी अपनी अपनी गंध कुटी भी वहाँ पर भी होती रहती है। ये उसी से समान लेवल पर है विराजमान। ये फिर बाहर होती होगी जो कुछ है यथायोग्य बाद में होती होगी वहाँ वही के वही तो नहीं दिए वही तो वही नहीं चिरेगी। नहीं बाहर भी समोचन चला गया वो थोड़े समोचन के साथ जाएंगे। चलो
तो क्या जो केवली रहते हैं वो केवली अरे जो केवली होते हैं वो एक ही जगह स्थित रहता है
ऐसा नहीं, विहार होता है ना उनका
विहार होता है,
सामान्य केवलियों का भी विहार होता है। हाँ। ये जरूरी नहीं कि तीर्थंकर जाए वहीं पर वो चले।
हाँ,
उनका अलग से भी विहार होगा कि नहीं होगा। विहार तो होता है बाहर, देशना भी होती है विहार भी होता है। मुख केवली और विहार तो होता होगा और अंतकृत का तो सवाल ही नहीं, वो तो तत्काल ही उनके छोटा काल है ना, केवल ज्ञान होकर मुख भी चले जाते
हैं।
ऊपर ऊपर में
ऊपर
में
तो वो खाली करो मतलब
विघटन होता है और वहाँ जहाँ दूसरा है वहाँ उसकी रचना हो जाती है। अब देव जो कोई आपके लिए कुछ मदद तो करते होंगे ना।
अरे मैं बता रहे इसके लिए तो लगाते हो, इसके लिए तो लगाते हो।
हाँ हमें चिंता किसकी लगती
है।
अरे असंख्या तो देव है
मनुष्य।
देखो उसकी चला, ये तो अपनी बात तो चल रही थी, उसका रेफरेंस बता दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 27 पर नीचे का सूत्र पढ़िए। ऊपर भी वो सूत्र है मगर उसको वो फ्लावर की साइन नहीं है। हाँ, जो पूवम दंशन मोहनियम खवेदुण पच्छा कसाए उसामे भी, जो वा दंशन मोहनियम अखवेदुण कसाए उसामे तेसिम दुन्नम पी जीवाणम कसायेसु वसंतेसु तुल्य काले समधिच्छिरे तुल्यम श्री संत कम्मम। ये सत्कर्म की बात अपनी चल रही है, समान होती है कि असमान होती है उसकी बात चल रही है। उसके लिए हमने ये देखा था कौन किसकी किसकी समान होगी। तो जिन्होंने दशमों की उपशमना एक साथ की है और अनंतानुबंधी की विसर्जना भी एक साथ की है, वो अभी एक साथ क्षपना शुरू करते हैं तो उनकी स्थिति समान होती है। ये बात हमने देखी। अथवा दोनों ही जीव उपशम श्रेणी से चढ़ के उतरे हैं और उन्होंने शुरू की है तो भी समान होगी। असमान होने का कारण क्या था कि कोई वेदर समय तो में 66 सागर या 266 सागर तक वो तो घूमा, बाद में उसने क्षपणा की और किसी ने थोड़े काल में की, तो उनके उसमें अंतर होगा क्योंकि उसके 266 सागर प्रमाण स्थितियाँ गल चुकी है और एक की ओर बाकी है, तो स्थिति में अंतर पाया जाएगा। कब? अपूर्वकरण के पहले समय की बात है, यानी वहाँ का स्थिति सत्व स्थिति कांडक दोनों बड़े हो गए। ये डिफरेंस कैसे हो सकता है उसकी बात करें। फिर एक बात ये ली कि किसी ने उत्सम श्रेणी करके उतरा है और थोड़े अधिक काल के बाद उसने क्षपणा चालू की, और कोई ऐसा है कि उत्सम श्रेणी उतर के तत्काल अंतर्मोच में उसने क्षपणा चालू। यहाँ तो बताते समय अंतर्मोच का डिफरेंस बताया था, अंतर्मोच के अंतर से दोनों में जो डिफरेंस होगा तो उनकी स्थिति में भी वैसा अंतर पड़ेगा। अब आगे की बात यहाँ कर रहे हैं, हम हिंदी में पढ़ेंगे। जो जीव पहले दर्शन दशन हुआ है, दर्शन मोहनी का क्षय करके बाद में कषायों का उपशम करता है, अथवा जो दर्शन मोहनी का क्षय किए बिना कषायों का उपशम करता है, उन दोनों ही जीवों के कषायों के उपशांत होने होकर समान काल व्यतीत होने पर समान स्थिति सत्कर्म होता है। क्या कहा? एक ने दर्शन मुनि का क्षय करके बाद में कषायों का उपशमन किया और एक क्षायिक हुए बिना यानी द्वितीय उपशम करके कषायों का उपशम किया। तो जब कषाय उपशांत हो गए हैं समान काल व्यतीत होने पर समान स्थिति सत्कर्म होता है। अब इसका स्पष्टीकरण बता रहे हैं। अनंतर विवक्षित हुए इन दोनों जीवों के कषायों के उपशांत होने पर और अधस्थिति गालन रूप व्यापार के द्वारा, अधस्थिति गालन समझते हो नितिन भाई? अध यानी नीचे की, स्थिति यानी नीचे, गलना यानी फिर जाना, उदय रूप होकर निकल जाना। तो जितना काल जाएगा एक एक समय में एक एक नीचे फिर जाएगा, तो कहते हैं अधस्थिति गालन रूप व्यापार के द्वारा समान विश्राम काल के व्यतीत होने पर स्थिति सत्कर्म समान ही होता है। विश्राम काल में वो उतरते ही तत्काल ही क्षपणा नहीं करेंगे, थोड़ा बीच में अंतर्मुख चला जाएगा, विसदृश नहीं होता। यह उक्त कथन का तात्पर्य है क्योंकि जो पहले दर्शन मुनि का क्षय करने वाला जीव है वह यद्यपि अपने स्थिति सत्कर्म के संख्यात बहुभाग का घात करता है तो भी उसके द्वारा घाता जाने वाला वह स्थिति विशेष, चारित्र मुनि के उपशामक द्वारा घाते जाने वाले स्थिति विशेष के भीतर ही पतित होता है, उससे अधिक वह नहीं पाया जाता। यानी जितना चारित्र मुनि के उपशामक द्वारा जो घात होता है और क्षपणा द्वारा घात होता है, तो क्षपणा द्वारा कम होता है,
उपशम द्वारा ज्यादा,
उपशामक से ज्यादा।
कहते क्या कोई
हाँ ज्यादा
ज्यादा होती है
उसमें भी, आठवें में ज्यादा, नौवे ज्यादा, दसवें ग्यारहवें में और ज्यादा, हाँ उसके अंदर भी आ गया।
कोई वेदक थी में
यहाँ तो स्थिति की बात है, स्थिति सत्व की बात चल रही है।
कोई वेदक समय दृष्टि प्राप्त करता है वेदक समय से, अच्छा इसकी सत्ता वाला जीव उपशम किए बिना वेदक समय को प्राप्त करेगा, उसकी स्थिति तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा।
परंतु यहाँ किसकी बात, उसकी बात कहाँ ली यहाँ पर, ऑलरेडी जिसने क्षपणा कर दी है और जो उपशम कर रहा है अभी उन जीवों की बात कर रही है, पहले वाली बात हो गई अपनी, उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे।
नहीं पर वहाँ पे हम लोग वो जो कोई जीव है मिथ्यात्व में गया उसके वापस अट्ठाईस की सत्ता वाला वेदक समय को प्राप्त किया, उसकी स्थिति तो बहुत बड़ी देखी थी।
तो इसीलिए तो पहले वो डिफरेंस बता दिया उन्होंने,
संख्या जुड़ा वहाँ पे
पहले तो डिफरेंस बता चुके हैं, अभी उसकी बात नहीं चल रही है। अभी ये दूसरे दो जीव ही है, अभी इसको समझो, अभी एक ने तो साइड करके उत्सम श्रेणी चढ़ा है, दूसरा द्वितीय उत्सम के साथ उत्सम श्रेणी चढ़ा है, फिर भी ग्यारहवें गुण स्थानों में दोनों की स्थिति समान होगी, ये बात यहाँ चल रही है, अभी इसको समझो पहले। स्थिति विशेष है पर्टिकुलर निषेध, यानी कितने निषेकों का घात किया उसकी बात। शंका, जिसने दर्शन मुनि का क्षय किया है ऐसा जीव कषायों का उपशम करता हुआ दूसरे उपशामक के द्वारा घात करने से शेष रहे स्थिति सत्कर्म से नीचे अपकर्षण कर क्यों नहीं घातता है। मैंने एक ऑर्डिनरी लिया और एक साइक लिया, तो कहते उसका स्थिति घात ज्यादा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता है। उसका समाधान, नहीं क्योंकि उससे नीचे उसके घात करने की शक्ति पाया जाना संभव है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है। इसी सूत्र से जाना, मूल सूत्र में बताया है कि एक तो साइक करके उत्सम श्रेणी चढ़ा है और ये बिना स्ट्राइक करके चला है और दोनों का समान काल व्यतीत होने पर समान स्थिति होती है, ये मूल सूत्र की बात है। विशेषा नहीं, ये इसलिए नीचे से चौथी लाइन, इसलिए अपनी अपनी विधि से आकर कषायों की उपशम ना करने के लिए उद्यत हुए दोनों ही जीवों के अनिवृत्तिकरण के प्रथम स्थिति कांडक के पतित होने पर वहाँ से लेकर सर्वत्र ही स्थिति सत्कर्म सदृशी होता है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि परिणाम भी समान है और जो कोई डिफरेंस होगा वो स्टार्टिंग में था, वो एक कांडक होते ही वो सर्वत्र समान हो जाता है। विशेषार्थ, यहाँ यह बतलाए कि चाहे दर्शन मुनि का क्षय कर कषायों का उपशम करने वाला जीव हो, चाहे दर्शन मुनि का क्षय किए बिना कषायों का उपशम करने वाला जीव हो, इन दोनों के अनिवृत्तिकरण में प्रथम स्थिति कांडक का पतन होने पर जो स्थिति शेष रहती है वह समान ही होती है। प्रथम जीव के दूसरे जीव की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण में प्रथम स्थिति कांडक के पतन के बाद और कम स्थिति नहीं हो सकती, यानी स्थिति और ज्यादा घाती नहीं जा सकती। उक्त शंका समाधान का भी यही तात्पर्य है। हाँ, बाद में सब स्थिति कांडक भी समान हो गए, स्थिति सत्व भी समान हो गए, जो असमानता है वो पहले कांडक से पूरी की जाती है, बाद में सब समान हो गए। अब एक जीव कषायों का उपशम करके बाद में दर्शन मुनि का क्षपक हुआ है, डिफरेंस क्यों बता रहे, दोनों ने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे हो, दोनों का समान काल बीत गया हो तो दोनों की सत्ताएं नहीं, स्थिति सबका समान होता है। अब आगे दूसरी बात बता रहे हैं स्थिति, हाँ नहीं नहीं उनकी स्थिति समान हो गई, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे नहीं सब हो चुका है ना उनका, तो उनके लिए समान स्थिति है। अब आगे दूसरी और बात उठा रहे, अब एक जीव कषायों का उपशम करके बाद में दर्शन मुनि का शपक हुआ, पहले कैसे लिया था, एक सपना करके उपशम से नहीं चढ़ा है और दूसरा बिना सपना करके चढ़ाए ने भी उपशम के साथ चढ़ा है, फिर भी उतरने के बाद समान काल में उनकी समान स्थिति हो, ये बात वहां बताई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ले रहे, एक जीव कषायों का उपशम करके बाद में दर्शन मुनि का शपक हुआ है तथा अन्य एक जीव पहले ही दर्शन मुनि का क्षय करके बाद में कषायों की उपशमना में व्यापृत हुआ है, अपनी क्रिया को समाप्त कर समान समय में वर्तमान इन दोनों जीवों के स्थिति सत्कर्म क्या सदृश होते हैं या विसदृश होते हैं, ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो स्थिति के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखी, जरा निकालो पहली वाली बात, ये तो 23 पृष्ठ से शुरू हुआ था नीचे एकदम डायरेक्ट सूत्र पढ़ती हूँ। अपूर्वकरण के प्रथम समय में दो जीवों में से किसी एक के स्थिति सत्कर्म से दूसरे जीव का स्थिति सत्कर्म तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है, संख्यात गुना भी होता है। ये कहाँ की बात चल रही है, अपूर्वकरण में चल रही बात। इसी प्रकार दो जीवों में से किसी एक स्थिति कांडक से दूसरे जीव का स्थिति कांडक तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है और संख्यात गुना भी होता है। इसके लिए वो क्या उसके कारण हो सकते उसकी बात की थी, क्योंकि वैदिक समय में बहुत काल बिताकर किसी ने क्षपणा की, किसी ने जल्दी में जल्दी की, तो उसमें वो डिफरेंस पड़ सकता है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी, हाँ विसदृश तो उसी की बात चल रही है ना, कम अधिक होने का ही, विशेष अधिकपना की बात। सदृश कैसे होगी, तो जिन्होंने एक साथ उपशम समय को प्राप्त किया, एक साथ अनंत अनुबंधी की विसर्जना की और एक साथ दर्शन मुनि की सपना उतने ही काल में, उसके समान होगी। विशेष अधिक किसके होगी, तो ये जो डिफरेंस हमने बताया वैदिक समय का उसके कारण होगी, या एक जीव पहले उपशम श्रेणी पर चढ़ के उतरा, थोड़ा रुका, दूसरा उसके पश्चात चढ़ के उतरा, तो इसका थोड़ा अंतर्मूल का डिफरेंस पड़ा, तो भी उसका विशेष अधिक होगा। विशेष अधिक की बात उन्होंने इस तरह से उठाई। उसके बाद हम आते हैं 26 पृष्ठ पर, तो यहाँ बताई थी नीचे कि दो जीवों में से एक जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर और कषायों का उपशमन कर दर्शनमुखी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ और दूसरा जीव कषायों का उपशम किए बिना दर्शनमुखी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। तो जो बिना उपशम किए उद्यत हुआ है वो अन्य जीव की अपेक्षा संख्यात गुना होगा, ये तो समझ में आ गई ऐसी बात है। सूत्र में फ्लोर नहीं, हाँ 26 पेज उसकी जो चिन्ह बनाए ना सूत्रों के, वो बहुत जगह नहीं है, कहीं हिंदी में नहीं है, कहीं प्राकृत में नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ डाल देना है। ये तो हमने वहाँ देखी बात। अब उसके बाद अभी अभी जो पढ़ा था 27 पेज पर नीचे कि एक बिना दर्शन मौके क्षय के उपशम से नहीं चढ़ के उतरा है और दूसरा क्षय करके चढ़ के उतरा है, तो दोनों के उपशम श्रेणी उतरते हुए समान काल में समान स्थिति होगी। एक शायद के साथ चढ़ के उतरा और एक औपशमी यानी द्वितीय उपशम के साथ चढ़ के उतरा, फिर भी कषायों के उपशमना में उनके अनिवृत्तिकरण के पहले स्थिति कांडक के बाद सभी स्थिति समान हो जाती, ये बात वहाँ हो गई। अब जो हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं 29 पृष्ठ पर, यहाँ भी वो फ्लॉर बनाना, बीच में जो पैराग्राफ है ना बोल लेकर, वो सूत्र है, जो पूर्वम कसाये व सामे यूण पच्छा दंशन मोनियम खवेई अन्नो पूर्वम दंशन मोनियम खवे यू न पच्छा कसाय उषा में ही एदे सिम दोनमती दोनहम हुआ है दोनमती खीन दंशन मोहनियाणम खवन करणेशु वसम करणेशु च निच्छिदेशु तुल्ले काले विदिक्कन्ते जेन पच्छादंशन मोनियम खविदम तस्सक्षिदिसंतकम्मम खवम जेन पूर्वम दंशन मोहनियम खवेयु न पच्छा कसाय उसामिदा तस्सक्षिदिसंतकम्मम संख्येज गुणम। संख्यात गुणा कैसे हो सकता है उसके लिए यहाँ फिर दूसरा एक तरीका बता रहे हैं, नीचे हिंदी में पढ़ेंगे हम अब। हाँ, जो पहले कषायों को उपशमा कर बाद में दर्शन मोहनी का क्षय करता है और अन्य जीव पहले दर्शन मोहनी का क्षय कर बाद में कषायों को उपशमाता है, दर्शन मोहनी का क्षय करने वाले इन दोनों ही जीवों के क्षपणाकरण और उपशमनाकरण के समाप्त होकर तुल्य काल के व्यतीत होने पर जिसने बाद में दर्शन मोहनीय का क्षय किया है उसका स्थिति सत्कर्म थोड़ा होता है। क्या कहते हैं, एक ने पहले दर्शन मोहनीय का क्षय किया फिर उत्तम श्रेणी चढ़ के उतरा और उसका जितना काल बीत गया, यानी उसने पहले क्षपणा की बाद में उपशमना की, उपशमना नहीं चारित्र मोक्ष। दूसरा कौन सा लिया, पहले उपशमना की क्षपणा की और उसका भी क्षपणा के बाद उतना ही उसका काल व्यतीत हुआ, तो दोनों के स्थिति सत्कर्म की बात अभी यहाँ चल रही है। तो जिसने बाद में क्षय किया उसका स्थिति सत्कर्म थोड़ा है। जिसने पहले दर्शन होने का क्षय कर बाद में कषायों को उपशमाया है उसका स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणा होता है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यथा जिन्होंने दर्शन मोहनीय का क्षय किया है ऐसे इन दोनों जीवों के अध प्रवृत्त भेद से भेद को प्राप्त हुए क्षपणाकरणों और उपशमनाकरणों के यथा निर्धारित क्रम से संपन्न होने पर, यानी पहले क्षपणाकरण हुआ कि उपशमनाकरण, तो दो जीवों के अलग अलग है तो ये समाप्त होने पर, यानी एक ने पहले क्षपणा फिर उपशमना की, दूसरे ने उपशमना करके क्षपणा की और दोनों ही अपने अपना जो विधान है विधि है वो समाप्त होकर समान काल बीत गया, विश्राम काल चला उनका, तो समान विश्राम काल के व्यतीत हो जाने पर, वो भी अंतर्मुख का होता है, जिसने बाद में दर्शन मोहनीय का क्षय किया है उसका स्थिति सत्कर्म दूसरे के स्थिति सत्कर्म से बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि कषायों को उपशमाने वाले परिणामों से घात को प्राप्त हुई स्थिति का फिर भी दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले परिणामों के द्वारा घात देखा जाता है। हमने ये पहले ही उन्होंने बताया था, द्वितीय उपशम के साथ चढ़ा हुआ है या क्षायिक के साथ चढ़ा हुआ है, उपशमना के बाद दोनों की स्थिति समान हो जाती है, क्योंकि जो पहले जिसने क्षायिक किया है उसका स्थिति का जो हुआ है वो उसी के अंदर गर्भित हो जाता है, यानी कषायों की उपशमना के काल में जो स्थिति घात होता है जिसने पहले कर चुका है तो पहले कर चुका है फिर भी उनकी स्थिति तो उतनी ही होनी है, जब अनिवृत्तिकरण में आते हैं तब जिसकी अधिक स्थिति थी उसकी वहाँ कट हो जाती है, जिसने पहले ही कट होती है उसकी भी उतनी ही रहती है, उसकी और ज़्यादा कम नहीं होती, परंतु अभी दोनों एक उपशमना करके उतरा है, अब जितनी है उसमें से अभी कट हो जाएगी क्षपणा के कारण, ख्याल में है नहीं ये बात नहीं आई फिर से, जो पहले क्षपणा कर चुका और अभी उसने उपशम श्रेणी चढ़ी, तो उपशम श्रेणी चढ़ते हुए अनिवृत्तिकरण में क्या होता है, किसी की स्थिति कम है किसी की ज्यादा है, कटौती होकर सभी समान हो जाती, तो जिसने पहले क्षपणा का कार्य किया है उसकी पहले से स्थिति कम थी, परंतु वो कम स्थिति उपशमना के काम में और कम नहीं होगी, वहाँ जितनी मिनिमम सबकी समान होनी उतनी हो जाएगी। यानी पूर्व अवस्था में क्षपणा करने से उसकी स्थिति और घटेगी उपशम श्रेणी में, ऐसा नहीं है। परंतु अभी दो उपशम श्रेणी करके उतरा है, जिसने पहले क्षपणा की है उसकी तो उतनी जितनी घाती स्थिति उतनी रहेगी, और जिसने बाद में क्षपणा की है
उसकी ज्यादा कम,
तो अभी जो जितनी घात हुई उससे और कटौती हो जाएगी क्षपणा के कारण। इसलिए जो बाद में क्षपणा करता है उसकी स्थिति और कम हो जाएगी।
जैसे
क्षपणा
से पहले
फिर वो 40 हो गए,
40 होगी,
40 होगी, और जो 60 चढ़ा वो भी 40 होगी। परंतु ऊपर चढ़ के उतरा है और बाद में जो अधिक क्षपणा करे तो 40 वाला का और 30 वाला हो
जाएगा।
अभी 40 हो गए, वो 100 से चढ़ा या 60 से चढ़ा सबकी 40 हो गई। यानी जिसने पहले क्षपणा की थी उसने 60 करके फिर 40। अभी उतरते समय क्या होगा, 40 है ना, जिसने बाद में क्षपणा की उसका क्या होगा, यानी वो 100 के साथ चढ़ा था उसकी 40 हुई, अब वो उतरा है तो 40 से और 30 कर देगा मान। परंतु जिसने पहले क्षपणा का कार्य चुका कर चुका है वो 40 की 40 रहेगी।
पर पहले हमने जो परिणामों की शक्ति की बात देखी थी क्षपणा के समय में और उपशमना के समय में, तो यहाँ पे क्या वापस वो उपशम करके वापस नीचे उतरा तो उसकी स्थिति कम हो गई। अभी वो क्षपणा के लिए उद्यत हुआ तो वो परिणामों में इतनी शक्ति होगी कि उससे भी कटौती हो जाएगी। क्योंकि ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो सपना करता है उससे उपशम श्रेणी में विशुद्धि बहुत ज्यादा होती है।
हाँ, परंतु इसमें और फिर दोबारा करण मान लें ना, तो उस करण परिणामों के कार्य तो होगा उसका,
पर वो
विशुद्धि परंतु उतरने के बाद विशुद्धि कम हो गई ना उसकी।
हाँ, वो विशुद्धि कम हो गई,
छठे में आ गए।
नहीं, पर एक बार जो हमने पहले इसे देखा था, हम लोग भी इसे देखा था कि हमने जो पहले देखा था कि प्रथम अवसर के बाद तीनों अनंत अनुबंधी की विश्वविद्या करता है, पीछे दर्शन मौली की सपना करता है, उसके पश्चात वो जो श्रेणी में चढ़ता है पूर्व कर्मी उसके कारण वहाँ पर विशुद्धि ज़्यादा ज़्यादा होती जाती है। तो एक बार विशुद्धि ज़्यादा हो गई, अभी दर्शन मौली की सपना के लिए उद्यत हुआ उसकी विशुद्धि इतनी नहीं हुई जितनी श्रेणी में हुई, तो
भी होगी फिर भी। इसीलिए वहाँ तो हमने 20 की या 40 की कटौती की होगी, हमें 10 की तो होगी कि नहीं सपना में, फिर कुछ तो होगा कि नहीं कार्य,
कुछ कार्य होगा,
बिल्कुल होगा, होना ही चाहिए। हाँ, करण परिणाम है, अनिवृत्तिकरण है, वहाँ तो जरूर होगी। विशेषणा में भी होती तो सपना में क्यों नहीं होती, जहाँ विसर्जना में जो तीन करण होते हैं वहाँ भी स्थिति की घात स्थिति का घात हो जाता है, तो यहाँ तो सपना हो रही है। स्थिति और अनुभाग, स्थिति और
अनुभाग
समान की क्या, स्थिति और अनुभाग का कंपेरिजन कैसे, हाँ होगी ना, अनुभाग के भी होगी। हाँ, अनुभाग भी क्योंकि विशुद्धि समान हो जाती है, विशुद्धि समान हो जाती है, अनुभाग भी हो जाती है। अभी यहाँ तो स्थिति की बात चल रही है, अनुभाग से शायद आगे बताएंगे तो अलग से बताएंगे। हम 30 पृष्ठ पर पढ़ रहे थे, स्थिति ज्यादा घटी। हाँ, और जिसने पहले सपना की है उसकी तो मैक्सिमम जितनी घटनी थी उतनी, हाँ वो उतनी उसकी घटी, तब तक वो तो जब तक श्रेणी चढ़ के उतरा है विश्राम काल में तब तक। अभी उपशम श्रेणी उतरा और फिर रेगुलर चला तो फिर दोबारा बंद होगा। हाँ देखो, सेकंड लाइन में फिर पढ़ूंगी मैं, क्योंकि इससे कषायों को उपशमाने वाले परिणामों से घात को प्राप्त हुई स्थिति का फिर भी दर्शन मुख की क्षपणा करने वाले परिणामों के द्वारा घात देखा जाता है, परंतु जिसने पहले दर्शन मुनियों का क्षय कर बाद में किसान को उपसमाया है उसका स्थिति सत्कर्म पूर्व में कहे गए उक्त जीव के स्थिति सत्कर्म से संख्यात गुणा होता है, क्योंकि इसके जो सपना में उससे संख्यात गुणा घाटी हो गया है ना, संख्या से भाग रही, क्योंकि दर्शन मुखी सपना के निमित्त से होने वाले स्थितिघात से उत्पन्न हुआ विशेष पुनरुक्त रूप से वहाँ नहीं पाया जाता। यानी पहले उपशमना हुई वहाँ घात हुआ और सपना में दोबारा घात हुआ वो पहले वाले जीव के नहीं पाया जाता, तो उसने जितने उपशमना में जितना घात किया उतना रहता है और जिसने बाद में एक सपना की उसका और अधिक घात हो जाता है। शंका, वह भी कैसे? समाधान, कषायों को उपशमाने वाले के द्वारा घाती जाने वाली स्थिति में ही उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। कौन ये जो जिसने पहले क्षपणा की थी, जैसे आपने उदाहरण दिया ना, बिना क्षपणा वाला सौ था और क्षपणा वाला ने 60 कर दी और दोनों की उपशमना में 40 हो जाएगी, ये 60 से 40 होगा, वो 100 से 40 होगा। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो जीव दर्शनों की क्षपणा किए बिना कषायों के उपशमाने में प्राकृत होता है और उपशमाने में क्या हुआ, लगता है उन्हें चालू कर देता है, कार्य करता है, और जो जीव दर्शन मुनि की क्षपणा कर कषायों के उपशमाने में व्यापृत होता है उन दोनों का घात करने से शेष बचा स्थिति सत्कर्म सदृश रूप से स्वीकार किया गया है, इससे उक्त कथन सिद्ध है। काल तो समान है, पहले ही कांडक में उसका हो जाता है, पहले कांडक में बराबर हो जाती है, पहले कांडक के बाद सगर समान, पहले कांडक होने के पश्चात फिर कांडक भी समान हो गए और स्थिति भी समान हो जाएगी।
अनिवृत्तिकरण का पहले कांडक होने के पश्चात
अब आगे पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। प्रसंग प्राप्त इस सब का विचार किया, क्या कहते हैं, इन सब का विचार क्यों किया, क्योंकि पहले स्थिति की बात निकली थी इसलिए प्रसंग पाकर इनका भी कथन कर लिया, क्योंकि दर्शन मोह के क्षपक के अपूर्वकरण के प्रथम समय में इस सब अर्थ के विचार की आवश्यकता नहीं है। अपना विषय कहाँ चल रहा था, जो अभी हमने बताया आपको 23 पेज पर ही देखा ना अभी कि अपूर्वकरण के पहले समय में क्या पोजीशन है,
स्थिति
कितनी है, उसकी बात चल रही थी, फिर भी प्रसंग पाकर इनका भी सांगोपांग विचार कर दिया। परंतु यहाँ पर प्रकृति में उपयोगी इतना ही है कि कषायों को उपक्षमा कर बाद में दर्शन मुनि का क्षय करने वाले जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय में, मेरा सवाल है ये अपूर्वकरण कहाँ कहाँ होगा देवदोषी साहब, ये अपूर्वकरण कहाँ कहाँ होगा, नहीं नहीं यहाँ क्या लिखा, कषायों को उपक्षमा कर बाद में दर्शन मुनि का क्षय करने वाले जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय में,
तो
लक्ष्मी आप कहेंगे प्रथम उत्तम का कहाँ नहीं है सवाल,
उत्तम
कहाँ कहाँ होता है नहीं पूछा, यह अपूर्वकरण कहाँ कहाँ श्रेणी का हाँ हाँ आप क्या कहते थे लक्ष्मी जी, ये तो हो गया ना कशांक उपसमा कर उतना अभी वो तो वो अपूर्वकरण कौन सा लेना है
पहले,
हाँ बोलो
ये श्रेणी से नीचे उतरेगा तो चार पाँच छः सात कोई भी गुणस्थान नहीं हो सकता।
हाँ सपना के लिए अपूर्वकरण कर रहा है उसकी बात, उत्तम श्रेणी का अपूर्वकरण हो चुका उसका, अनंत अनुबंधी तो उसे
पहले भी
है क्योंकि तभी तो उसने उत्तम श्रेणी चढ़ी थी, अभी अलग अभी अपूर्वकरण किसका चल रहा है, जहाँ कहीं जिस गुणस्थान में वो दर्शन मुखी सपना का के लिए उद्यत हुआ है उसका अपूर्वकरण है। छे को क्यों छोड़ा, चार पाँच छः सात सभी लेना गुणस्थान, कीर्तन के प्रकृति के बंध का प्रारंभक हो या सपना का प्रारंभक हो चारों ही गुणस्थानों में होता है। लोग क्या सोचते हैं अरे छठे में कैसा होगा सातवें में कैसा होगा, ऐसा नहीं है चारों ही गुणस्थानों में होता है। यहाँ लिखा ना कषायों को उपशमा कर बाद में दर्शन मुनि का क्षय करने वाले जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्राप्त स्थिति सत्कर्म और स्थिति तांडक जिसने कषायों को नहीं उपशमाया है ऐसे दर्शन मुनि का क्षय करने वाले जीव के अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्राप्त स्थिति सत्कर्म और स्थिति तांडक से संख्यात गुणाहीन होता है, क्योंकि उपशमाया है तो वहाँ तो स्थिति का घात बहुत किया है इसलिए वो संख्यात वे भाग प्रमाण जिसने कषायों को नहीं उपशमाया है उत्तम श्रेणी चढ़े बिना जो साइक समय को प्राप्त करने चालू किया सपना चालू की है उसका संख्यात गुणा होगा उसका अधिक होगा, उत्तम श्रेणी चढ़ के उतरने वाले के संख्यात वे भाग प्रमाण होगा और इसका संख्यात गुणा होगा। यहाँ क्या लिखा है संख्यात गुणाहीन यानी संख्यात वे भाग। अब ये अपूर्वकरण के पहले समय में क्या पोजीशन है उसकी बात बता चुके हैं, कौन से जीव लिए दो, एक उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और एक ने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने का कार्य नहीं किया है डायरेक्ट वो सपना के लिए उद्यत हुआ है। तो अपूर्वकरण के पहले समय में एक का संख्यात भाग प्रमाण है और दूसरे का ज्यादा है उसके संख्यात। अब अपूर्वकरण के प्रथम समय से आरंभ कर स्थितिकांडक आदि का कथन परिपाटी क्रम से करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं, क्योंकि अपने सपना का कार्य सब बताएंगे तो पहले बाकी जो उन्होंने एक का अपने को तो प्रसंग पाकर सब हमें कथन कर दिया था, अब अपूर्वकरण से जो बात शुरू होती है स्थितिकांडक के आदि उसकी बात यहाँ बताएंगे। 21 पृष्ठ पर जो जीव जघन्य स्थिति सत्कर्म के साथ आकर क्या ओहो ये क्या है ये जो बीच में वाली लाइन है ना वो नहीं वो लिखी नहीं है वो नीचे आई है हाँ वो हाँ वो ही ऊपर सूत्र है और वो हिंदी का उसका अर्थ जो है उसके नीचे लाइन नहीं चाहिए उसके ऊपर लाइन चाहिए। तो पहले हम सूत्र पढ़ेंगे अपूर्वकरणस्य परम समय जहन्नगेन कम्मेन उवट्ठिदस्य स्थितिखण्डगम पल्लो पलिदोवमस्य संख्यजदिभाग उक्कस्येन उवट्ठिदस्य सागरवम उदत्तम। क्या कहना चाहते हैं अपूर्वकरण में जो पहला स्थितिकांडक घात होगा तो जघन्य सत्कर्म से आए हुए को कितना होगा तो पल्ले का संख्यात्वा भाग समान और अधिक से अधिक बड़ा कांडक कितना होगा तो पृथक्व सागर का। हिंदी में पढ़ेंगे अभी मैंने प्राकृत का अर्थ बता दिया। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थिति सत्कर्म के साथ उपस्थित हुए जीव का स्थिति कांडक पल्लोपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। आगे का अर्थ क्यों नहीं लिखा? शायद आगे लिखा होगा अलग से। नहीं हाँ यहाँ लिख दो, देखो अपूर्व कर्म पढ़ने से जगन गए ना कम में उवर्थित उपस्थित हुए जीव के श्री खंडगम पलिद उमे से संख्य जी भागो उपकस्य न उवर्थित और उत्कृष्ट उत्कृष्ट के साथ उपस्थित हुए जीव के, उत्कृष्ट के साथ यानी उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ। हम डायरेक्ट पूरा डाले ना और उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ उत्कर्म स्थिति सत्कर्म के साथ स्थिति सत्कर्म के साथ हाँ उपस्थित हुए जीव का स्थिति कांड पूरा नहीं लिखे तो भी चले पर नहीं लिख देगा जीव का स्थिति कांड सागरोपम पृथक्व कहो या हाँ सागरोपम पृथक्व प्रमाण है सागरोपम पृथक्व सागरोपम पृथक्व है नहीं सागरोपम पृथक्व प्रमाण लिखो चो चले भाग नहीं है ये संख्या तो भाग था इसलिए भाग लिखा सागरोपम पृथक्व प्रमाण है कहो। देखो मैं अभी पढ़ती हूँ फिर पूरा सूत्र। अपूर्वकरण के प्रथम समय में जगन्य स्थिति सत्कर्म के साथ उपस्थित हुए जीव का स्थिति कांडक पल्लोपम के संख्यात्र भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म के साथ उपस्थित हुए जीव का स्थिति कांडक सागरोपम पृथक्व प्रमाण है। अभी इसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। जो जीव जघन्य स्थिति सत्कर्म के साथ आकर दर्शन मुखी क्षपणा का प्रस्थापक हुआ है। जघन्य स्थिति सत्कर्म के साथ कौन आएगा? हाँ दो बार चढ़ा अपना चैनल दो बार चढ़ाओ ना दर्शनों की क्षपणा का प्रस्थापक हुआ है। अपूर्वकरण के प्रथम समय में विद्यमान उसके यानी अभी वो अपूर्वकरण के पहले समय में है। आयु कर्म के अतिरिक्त यानी आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का जघन्य स्थिति स्थान कांडक होता है। परंतु कितने प्रमाण वाला होता है ऐसी आशंका होने पर वह पल्लवों के संख्यात्वे भाग प्रमाण होता है यानी अभी इससे छोटा नहीं इतना तो कांडक होगा। इस प्रकार उसके प्रमाण का निर्देश किया। इस वचन के द्वारा पल्लवों के असंख्यात्वे भाग प्रमाण आदि विकल्पों का प्रतिषेध किया जाना चाहिए क्या जानना चाहिए। जघन्य स्थिति से संबंध रखने वाला यह जघन्य स्थिति कांडक किसके होता है ऐसी पृष्ठा होने पर जिसने पहले कषायों को उपशमाया है उसके होता है ऐसा हम कहते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य जीव के प्रकृत विवक्षित स्थिति सत्कर्म सबसे जघन्य नहीं उपलब्ध होता। परंतु उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म जिसने पहले कषायों को उपशमाया नहीं है उसके जानना चाहिए क्योंकि पूर्व में कहे गए उक्त जीव की अपेक्षा इसका स्थिति सत्कर्म संख्यात गुणा होता है इसका समर्थन अनंतर पूर्व ही कराए हैं। उसी के उत्कृष्ट स्थिति कांडक होता है और वह सागरोपम पृथक्व प्रमाण है ऐसा निश्चय करना चाहिए। हाँ, सागरोकम पुस्तक का प्रमाण हमने ऊपर लिखा था ना, विशेषार्थ। यहाँ पर अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थितिकांडक किसके होता है और उत्कृष्ट स्थितिकांडक किसके होता है और उनका प्रमाण कितना है, इन सब बातों का खुलासा करते हुए बतलाया है। जो जीव उच्चम श्रेणी से उतरकर दर्शन मुनि की क्षपणा करता है, उसके अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थिति सत्कर्म होने से जघन्य स्थिति कांडक होता है, जिसका प्रमाण पल्लोकों के संख्यात विभाग प्रमाण है। तथा जो जो कषायों को उपशमाए बिना दर्शन मुंह की क्षपणा करता है, उसके अपूर्वकरण के प्रथम समय में पूर्व के स्थिति सत्कर्म से संख्यात गुणा उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म होने से सागरोपम पृथक्व प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कांडक होता है। ये बात ख्याल में आई? एक था जिसने उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है वो, और उसने ऑलरेडी स्थिति का घात किया है, और दूसरा जीव है वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा है, तो उसकी स्थिति ज्यादा है। जिसकी स्थिति ज्यादा है उसका स्थिति कांडक बड़ा होगा, जिसकी स्थिति जघन्य है उसका स्थिति कांडक जघन्य होगा। परंतु जघन्य में जघन्य कितना होगा तो पल्ले के संख्यात भाग, और ये बड़े में बड़ा कितना होगा तो पृथक्व सागर।
ये दो बार श्रेणी चलेगा तो दोनों
श्रेणी नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं, वो मेरी ओर से मैंने बताया था।
नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों बार कांडक होंगे?
जब जब श्रेणी चलेगा तो कांडक का कार्य तो होगा ही होगा, श्रेणी चला और कुछ कार्य नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो अब वहीं पर इन्हें कहा अपूर्वकरण के पहले समय स्थिति बंधापसरण के प्रमाण विशेष का अवधारण करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। यानी यहाँ स्थिति बंधापसरण, स्थिति अभी घटकर नई स्थिति बंधेगी तो उसमें कितनी कटौती होगी यहाँ पर, उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो इसके पहले इन्हें कहा था अधप्रवृत्तकरण में था, अब अपूर्वकरण में आया है तो यहाँ कोई नया स्थिति बंध होगा जो घटकर होगा। पहले सूत्र पढ़ेंगे, स्थिति बंधा दो जाओ ओसरी दाओ स्थितियो ताओ पलिदो वमस्त संख्यक यदि भागो। पिछले स्थितिबंध से यहाँ पर जिन स्थितियों का अपसरण किया है वे पल्लोकों के संख्यात्वे भाग प्रमाण है। यानी पूर्व स्थितिबंध से पल्ल के संख्यात्वे प्रमाण भाग प्रमाण कट कर घात होकर घट कर यह नया स्थितिबंध हो गया। अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होने वाले तत्प्रायोगिक अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बंध से वो लगातार लास्ट अंतर्मूर्त में उतने हो रहा था, अब यहाँ पहले ही समय से नया स्थिति बंध होगा। जिन प्रकृतियों का यहाँ पर अपसरण किया है उनका प्रमाण पल्लोपम के संख्यात्वे भाग प्रमाण ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जिनका करेगा, जिनका बंद हो रहा है उनका करेगा। अब वही अपसरण ने घटना कम होना, अब वही पर पहले बात स्थिति कांडक की बताई, स्थिति बंधापसरण की बताई, अब कहते अनुभाग कांडक के प्रमाण का निश्चय करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। उसका प्रमाण अलग था, यानी यहाँ नया स्थिति बंध शुरू हुआ इतना ही बताना है।
संख्या कौन सा
अधकरण में, अधकरण में याद नहीं है। अधकरण में चार बातें बताई थी,
पेज नंबर 22 बाईस नंबर पे लिखा ये पल्लोकम के संख्या के बाद स्थिति बंद करता है।
कहाँ पर 22 पे?
22 में वो ये सूत्र में बताया ना, 28 नंबर पर, 28 नंबर के लिए
22 में
22 पेज पे।
हाँ, स्थिति घात अनुभाग घात गुण श्रेणी गुण संक्रमण नहीं है, घात यानी कांडक घात नहीं है, फिर भी एक एक स्थिति बंध पल्लवपुंज के संख्या से भाग कम स्थिति बंध करता है। 22 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन में, हाँ, परंतु यहाँ और भी और घटेगा और नया स्थिति बंध होगा, ये बात यहाँ बताने। अब वहीं पर अनुभाग कांडक के प्रमाण का निश्चय करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं, अपसत्थानम कम्माणम अनुभाव खंडयम खंडय प्रमाणम अनुभाग का अनुभाग कयानम अनंता भागा आगाईदा। अनुभाग पद्दयानम चाहिए, पीछे देखो सूत्र में, अरे में वहां पर ये मिस्टेक होगी, पेज 32 पृष्ठ 336 पांचवी लाइन में, पांचवा नंबर स्थिति बंद कमाणम अनुभाग खंडय प्रमाणम अनुभाग फद्दयानम अनंता भाग आगाईदा। फद्दयानम चाहिए, अनुभाग फद्दयानम, यहाँ लिखा है अनुभाग कयानम नहीं, फद्दयानम, क के बदले फद्द चाहिए, फद्दयानम, यहाँ कयानम हुआ है, क के बदले फद्द, दो शब्द दो अक्षर चाहिए। इतना तो समझता है कि कुछ गलत है मुझे लगा स्पर्धक स्पर्धक, क्योंकि नीचे अनुभाग स्पर्धक लिखा था और पहले लाइन में भी पूर्वम ओवर्तिदानम अनुभाग फद्दयानम अनंता भागा, फद्द चाहिए। फिर पढ़ती हूँ मैं, अपसत्थानम कम्माणम अनुभाग खंडय प्रमाणम अनुभाग फद्दयानम अनंता भागा आगाईदा। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग कांडक का प्रमाण, अनुभाग स्पर्धकों का अनंत बहुभाग ग्रहण किया, यानी एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गना होती है, उसका अनंत बहुभाग यह कांडक रूप से ग्रहण किया। अभी इसको स्पष्टीकरण देखें, पहले अपवर्तित किए गए अनुभाग स्पर्धकों में से अनंत बहुभाग प्रमाण स्पर्धक आयु कर्म के अतिरिक्त अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग कांडक के लिए ग्रहण किए, क्योंकि प्रशस्त कर्मों का और आयु कर्म का अनुभाग कांडक घात नहीं होता। यहाँ पर अनुभाग कांडक के महात्म्य को जानने के लिए अल्प बहुत्व पहले के समान करना चाहिए। अब यहीं पर आयु कर्म के अतिरिक्त सब कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप भी प्रारंभ किया, इस बात के कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मैंने जो स्पर्धक है अनंत बहुभाग प्रमाण स्पर्धक पहले याद है,
अनंत बहुभाग निकल जाता है,
कांडक कितना है, अतिस्थापना कितनी है, निक्षेप कितना है, उसका अल्प बहुत तो बताया था उन्होंने, उससे वो अनंत गुना, उससे वो अनंत गुना वगैरह बात की थी, वही यहाँ पर भी लागू होगा ये बात कहना चाहिए। अब 33 पृष्ठ पर गुण श्रेणी उदयावली या बाहिरा, इसका अर्थ क्या है मंजू बहन? यानी क्या है उसकी रचना जो है उदयावली में तो क्रमहीन रूप से दिया जाएगा, अपकर्षण मान अपकर्षण का द्रव्य जो है नीचे जो द्रव्य आता है क्योंकि स्थिति कांड घात हो रहे हैं तो इतने परमाणु कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दूसरी बात सामान्य अपकर्षण भी हो रहा है, तो ये सारा अपकर्षित द्रव्य फिर दोबारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं। तो उदयावली में जितना उसका उसके खाते में उदयावली में आएगा वो क्रमहीन रूप से दिया जाएगा, नीचे ज़्यादा ऊपर। और जहाँ गुणश्रेणी रूप निषेक है वहाँ असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा, फिर ऊपरी कण स्थिति में फिर घटते क्रम से दिया जाएगा। तो ये गुणश्रेणी कहाँ है, तो उदयावली के ऊपर है। देखो इसको पढ़ेंगे, उदयावली के बाहर गुणश्रेणी की रचना की, अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही गुणश्रेणी की रचना की, किंतु उसे यहाँ पर उदयावली के बाहर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उदयादि गुणश्रेणी का निक्षेप संभव नहीं है। ये उदयादि क्या होती है लक्ष्मी, उदयावली के बाहर? तो देखिए उदयादि गुणश्रेणी किसको कहना है? हाँ हाँ क्या कहते हैं? हाँ बोलो बोलो। गुणश्रेणी, गुणश्रेणी का अर्थ क्या होता है? गुणित प्रमाण में देना, रचना जो होती है गुणित प्रमाण में देना। पहले हमने क्या देखी थी? उदयावली के बाह्य देखी थी, ये आवली प्रमाण निषेक छोड़कर फिर यहाँ ये गुणश्रेणी रूप से दिया, ये उदयावली के बाह्य में दिया। जहाँ कहीं उदयादि गुणश्रेणी होती है, श्रेणी में वगैरह होती है, नहीं श्रेणी में होती है, हाँ श्रेणी में भी उदयादि होती है, दोनों में होती। तो उदयादि का अर्थ होता है उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से दे दी, उदयादि गुणश्रेणी है ना? नहीं समझे? ये जो गुणित प्रमाण में जो दे दिया एक्स्ट्रा, ऑलरेडी पूर्व में निषेक थे अपकर्षित द्रव्य, जो फिर उसमें और एक्स्ट्रा दिया, वो गुणश्रेणी का अर्थ थे गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप रचना। यहाँ जितना दिया उससे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, उदयावली के बाहर था उसके आवली प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर के निषेकों में गुणश्रेणी रूप से देते थे। अब यहाँ वर्तमान समय से लेकर गुणश्रेणी रूप से देते हैं, इसको उदयादि। अच्छा ये उदयावली है, उदयावली में भी गुणश्रेणी रूप से दिया और ऊपर भी दिया।
ये तो गलितावशेष पे ही होगा ना?
गलितावशेष होता है,
गलितावशेष
उदयादि गलितावशेष, उदय खिरते जाता है, गलितावशेष ने गलित हो गया और अवशेष रही उसको गलितावशेष। जैसे प्रथम ऑप्शन में क्या किया था?
प्रथम तो प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति में
थी, अपन वो भी गलते गई थी ना,
वहाँ पे गुणश्रेणी रखता
है ये सर।
हाँ वही थी,
गुण संक्रमण नहीं था, गुणश्रेणी थी,
गुणश्रेणी थी
और वो भी वो गलित थी वहाँ पर,
वहाँ पर भी गलित।
यहाँ जो कुछ हो रहा है अभी यहाँ की बात करेंगे। हाँ प्रथम स्थिति, अभी यहाँ कैसी है? उदयावली में क्रमहीन देते हैं और बाद में विशिष्ट निषेकों में गुणित प्रमाण में देते हैं, तो कहाँ उदयावली के बाह्य गुणश्रेणी हुई। यहाँ क्या हो रहा है उसको पढ़ेंगे, बाकी कहाँ क्या होता है उसकी चर्चा छोड़ देंगे। ये जिसको मालूम नहीं उसको बहुत कंफ्यूजन होता है, ख्याल में आई ना बस। हाँ देखो अपूर्वकरण के अनुभाग की बात हो गई, गुणश्रेणी निक्षेप भी प्रारंभ करता है, अभी तीसरा कार्य चल रहा है। वैसे तो चौथा, एक तो स्थिति कांडक बताया, स्थिति बंध बताया, अनुभाग कांडक अप्रशस्त समय बताया, अब गुणश्रेणी निक्षेप बता रहे। निक्षेप यानी डालना, अपकर्षण जो हुआ है परमाणुओं का वो गुणश्रेणी रूप से कितने निषेकों में डाला जाएगा और कहाँ डाला जाएगा, तो कहते उदयावली के बाहर। अपूर्वकरण के प्रथम समय में ही गुणश्रेणी की रचना की, किंतु उसे यहाँ पर उदयावली के बाहर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उदयादि गुणश्रेणी का निक्षेप संभव है। यहाँ की बात करें परंतु उसका आयाम यहाँ के अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से विशेष अधिक प्रमाण है। यहाँ जो तीन करण होते हैं अपूर्व करण से गुण श्रेणी शुरुआत हुई, तो कितने निषेकों में गुणित प्रमाण में माल दिया जाएगा? तो यहाँ का जो अपूर्व करण का पूरा अंतर्मुख यहाँ के अनुवृत्त करण, ये गुणस्थान की बात नहीं है, यहाँ करण परिणाम करण के काल की बात है। अपूर्व करण के लिए जितना काल लगेगा उतने निषेक, अनिवृत्तिकरण के जितना काल लगेगा उतने निषेक और थोड़ा ज्यादा, इतने मिलकर यहाँ गुण श्रेणी की रचना होगी। ये बात ख्याल में आई? तथा यहीं पर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का गुण संक्रम भी प्रारंभ किया, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। चार बातें होती है, स्थिति कांड घात, अनुभाव कांड घात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। तो यहाँ गुण संक्रमण में किसको लेना? दर्शन मुनि की क्षपणा है, तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का गुणित प्रमाण में संक्रमण चलेगा, उसकी बात है यहाँ पर। शंका, सूत्र में उस प्रकार की प्ररूपणा क्यों नहीं की? समाधान, नहीं क्योंकि व्याख्यान से ही उस प्रकार के विशेष की सिद्धि होती है, अतः सूत्र में उस प्रकार की प्ररूपणा नहीं की। विशेषार्थ, यहाँ अध प्रवृत्तकरण से अपूर्व करण में उसके प्रथम समय से लेकर जिन विशेष कार्यों का प्रारंभ हो जाता है उनका उल्लेख करते हुए बतलाया है कि अपूर्वकरण के प्रथम समय से स्थिति कांडक घात क्या क्या होता है बता रहे, अनुभाग कांडक घात यहाँ लिखते नहीं है, केवल अनुभाग कांडक घात होता है ऐसा लिखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, अप्रशस्त में ही होता है क्योंकि अनुभाग किसका हीन हो जाएगा, अप्रशस्त का, प्रशस्त में तो बढ़ता चला जाएगा। गुण श्रेणी रचना सभी कर्मों में होती है आयु बिना, और गुण संक्रम ये चार विशेष कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कांडक एक पर्व कोर या हिस्से का नाम है, समझे ना, कोर ये गन्ने का होता है, ये हाथ का होता है, ये एक पैर या कोर कहते हैं, एक उंगली में ये तीन भाग दिखाई देते ना, एक एक कांडक, तो वैसे वहाँ कांडक को कहते हैं, एक टुकड़ा। आयु कर्म को छोड़कर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों की क्रम से उपरितन एक एक कांडक प्रमाण स्थिति का, यानी जो एक कांड का जो प्रमाण है, पल्ले का संख्या का भाग है या स्थिति का ज़्यादा है, तो क्या होगा उसमें से एक एक खाली एक एक कुआ ऐसा वर्टिकली उसके चीर चीर कर जैसे नीचे दिया जाए तो उसको खाली कहते हैं। तो वो कहाँ की खाली, कहाँ की स्थिति नष्ट हो जाने होने वाली है? ऊपर की, टॉप मोस्ट। तो एक एक कांडक प्रमाण स्थिति का खाली क्रम से एक एक अंतर्मूर्त में घात कर अभाव करना है। जितनी स्थिति पड़ी है सत्ता में, मान लेते इतनी स्थिति पड़ी है, अब इतना कांडक ले लिया, तो इस कांडक से क्या होगा, पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, ऐसे ही कम हो जाएगी, फिर अंतिम फाली गिरेगी तो इतनी स्थिति कट हो गई, स्थिति सत्व इतना रह गया, इतना कांडक प्रमाण उसका घात हो गया, यहाँ के निषेक नष्ट हो गए, परंतु ये परमाणु अभी है जीव के साथ, वो नीचे के निषेकों में आ गए, स्थिति कम हो, तो उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। जैसे लकड़ी के किसी कुंदे के करवत के द्वारा चीर कर अनेक फलक बना लिए जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक कांडक प्रमाण स्थिति के तत्प्रायोगिक अंतर्मूर्त काल प्रमाण फाली अनेक फलक बनाकर एक एक समय द्वारा एक एक फाली का अभाव करना, यह एक स्थिति कांडक घात कहलाता है। जो बड़े बड़े ऐसे वृक्ष होते हैं ना, ऐसे लकड़े, तो उसके ऐसे फाली, मराठी में फड़ी, फड़िया बना फालिया, तो ये हो गया, एक एक फाली का अभाव हो जाता है, स्थिति कम नहीं होती। जब तक अंतिम फाली नहीं खिलती है तब तक सत्ता की स्थिति तो कहेंगे ना इतनी है, जब तक वो फाली नहीं गिरेगी, एक भी फाली बाकी है, तभी स्थिति सत्व कितना है तो इतना है, अंतिम फाली खिलते ही एक साथ एकदम कटौती हो जाएगी। अपनी अपनी स्थिति सत्व स्थिति के अनुसार, स्थिति सत्व कहो या सत्व स्थिति कहो, यहाँ पर जघन्य स्थिति कांडक पल्लोपम के संख्यात विभाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति कांडक सागरोपम पृथक प्रमाण है, यानी स्थिति के प्रपोर्शन में होगा। इसी प्रकार अनुभाग कांडक घात समझना चाहिए। इतनी विशेषता है, अनुभाग कांडक घात अप्रशस्त कर्मों का ही होता है, प्रशस्त कर्मों का नहीं, क्योंकि वहां प्राप्त विशुद्धि के कारण आयु कर्म के साथ प्रशस्त कर्मों के अनुभाग का घात नहीं होता, तथा अप्रशस्त कर्मों का जितना अनुभाग सत्ता में होता है उसके अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग का प्रथम अनुभाग कांडक होकर उसका भी फाली क्रम से अभाव होता है। इसी प्रकार द्वितीय आदि अनुभाग कांडकों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। विवक्षित काल प्रमाण निषेकों में उपरीतन स्थितियों के द्रव्य को अपकर्षण करके गुणित क्रम से देना गुणश्रेणी निक्षेप है। अब ये तीसरी बात बता रहे गुणश्रेणी निक्षेप की, यानी अंतर्मूर्ख हो या जो गुणश्रेणी का आयाम जिसको हम कहते हैं उसमें ही निषेकों में गुणित प्रमाण में देते हैं। यहाँ उदयादि गुणश्रेणी रचना न होकर, उदयादि यानी उदय से लेकर, आदि लगाए ना, उदय समय से लेकर अगर देंगे तो उसको कहेंगे उदयादि गुणश्रेणी। अब यहाँ उदय प्रमाण ये उदय के समय से आवली काल छोड़कर ऊपर के निषेकों में गुणित प्रमाण में देते हैं, तो यहाँ उदयादि गुणश्रेणी रचना न होकर उदयावली के बाहर उपरीतन प्रथम स्थिति से लेकर, प्रथम स्थिति यानी प्रथम निषेक, जो प्रथम स्थिति यानी वो अंतर वाली नहीं, यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता, प्रथम स्थिति यानी प्रथम निषेक से लेकर कहाँ का प्रथम निषेक, उदयावली के ऊपर का पहला निषेक, यानी नीचे जघन्य युक्ता संख्या प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर का निषेक, अंतर्मूर्त काल प्रमाण निषेकों में यानी गुणश्रेणी का आयाम कितना है तो अंतर्मूर्त वाला है। हर समय ये कार्य चलेगा परंतु कितने निषेकों में ये दिया जाएगा गुणित प्रमाण में, तो अंतर्मूर्त के जितने समय है उतने निषेकों में गुणश्रेणी की रचना होगी। प्रकृत में अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उससे उक्त अंतर्मूर्त कुछ बड़ा है। ये अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक है तो वो कितने समझना, तो यहाँ अपूर्वकरण का काल प्लस अनिवृत्तिकरण का काल और थोड़ा ज्यादा, इतनी तो गुणश्रेणी रूप से रचना होगी उदयावली के ऊपर। प्रत्येक समय में तत्प्राज्य काल तक विवक्षित कर्म परमाणुओं का गुणित क्रम से अन्य सजातीय प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रम कहलाता है। विवक्षित कर्म परमाणुओं का यथायोग्य जिसकी बात चल रही है, ये कार्य प्रत्येक समय में होगा। गुण संक्रमण की बात चली, गुण निक्षेप गुणश्रेणी निक्षेप बात हो गई, अभी गुण संक्रमण की बात, यहाँ भी गुणित प्रमाण में उसका संक्रमण चलेगा। किसमें होगा संक्रमण, सजातीय प्रकृतियों में, वो गुण संक्रमण। यहाँ यहाँ यानी दर्शन मुनि की क्षपणा में यहाँ जो कार्य चल रहा है, यहाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों का गुण संक्रम प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर ये चार कार्य विशेष प्रारंभ हो जाते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार अपूर्वकरण के प्रथम समय में एक साथ आरंभ किए गए स्थिति कांडक अनुभाग कांडक स्थिति बंधापसरण अनुभाग बंधापसरण, वहाँ तो नहीं लिखा था, इसका अर्थ क्या होगा अनुभाग बंधापसरण ने क्या
नए बनने वाले कर्मों में अनुभाग की कटौती होगी,
प्रशस्त
नहीं प्रशस्त
अनुभाग जहाँ है ना अनुभाग बंधापसरण, यहाँ जो अप्रशस्त कर्म बन रहे हैं तो बंधेगी कि नहीं बंधे? ज्ञानावरणा नहीं तो बन रहे हैं, तो अनुभाग बंधा पिता, अनुभाग बंद किसका घटकर बंधेगा? अप्रशस्त में। हाँ आप क्या कहते हैं? हाँ अधकरण में हमने देखा था, वहाँ भी बताया वही से हो जाते, वो चार बातें तो पहले से ही चल रही है, वो तो चालू ही रखेगी। अपूर्वकरण में इन एडिशन ये चार बातें नहीं हो गई। कांडक घात अधकरण में नहीं थे, ना अनुभाग कांडक था ना स्थिति कांडक था, वहाँ तो प्रति समय विशुद्धि बढ़ रही थी। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घट रहा था, प्रशस्त का बढ़ रहा था, और बंद बंधा कर्म चल रहा था। अब यहाँ क्या कहते हैं, एक साथ क्या क्या आरंभ किए, स्थिति कांडक अनुभाग कांडक स्थिति बंधापसन, यहाँ कहने का कारण यहाँ नए प्रमाण से होने लगा। अनुभाग बंधापसन अनुभाग बंधापसरण गुणश्रेणी निक्षेप की द्वितीयादि समयों में किस प्रकार प्रवृत्ति होती है, क्या अन्य प्रकार की होती है या उसी प्रकार की होती है, इस प्रकार इसके निर्णय का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। प्रथम समय में क्या होता है उसकी बात बता चुके हैं, अब कहते दूसरे समय में क्या होगा, इसमें कुछ विशेषता है कि ऐसा ही चलेगा, तो सूत्र बताते हैं। विधि समय तम चैव त्रिखंडयम, विधि यह चाहिए ना, चौतीस चौतीस सात नंबर द्वितीय समय, द्वितीय समय यह चाहिए, 336 नीचे तो है ही, फिर भी सूत्र में कभी कभी क्या है, प्राकृत में कुछ शब्द ऐसे है कि दोनों चलते हैं। गाथा में द्वितीय लिखा है तो द्वितीय चाहिए, उन्होंने वो लिखा है द्वितीय लिखते हैं, वो चाहिए था क्योंकि बी होता ना बीबी बीबी और आसन याद है क्या? हाँ तो हिंदी स्टाइल में उन्होंने भी किया है, फिर भी वो बीबी चाहिए। बीबी समय तम चैव तिथि खंडयम, तम चैव अनुभाग खंडयम, सो चैव तिथि बंधो गुण सेरी अन्ना, तो समझते हैं? अन्य अन्य देखो, स्थिति कांडक तो एक समय में होगा नहीं, तो पहले समय में जो स्थिति कांडक ग्रहण किया है वही चलता रहेगा, स्थिति बंधन भी जो घटकर शुरू हुआ है उतना का उतना होगा, अनुभाग कांडक कांडक तो उसी को कहते जो अंतर्मूल तक चलता है, तो दूसरे समय में वही कांडक चल रहा है, परंतु गुण श्रेणी में जो है जितने पहले समय में अपकर्षित हुआ उससे असंख्यात गुना दूसरे समय में होता है, तो अन्ना कहा? अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरे समय में वही स्थिति कांडक है, वही अनुभाग कांडक है, वही स्थिति बंध है, किंतु गुण श्रेणी अन्य होती है। दूसरे समय में भी स्थिति कांडक अनुभाग कांडक और स्थिति बंधापसरण में भेद नहीं है, क्योंकि प्रथम समय में आरंभ किए गए उन्हीं की अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित रूप से प्रवृत्ति देखी जाती है, अवस्थित यानी उतने का उतना, परंतु गुणश्रेणी अन्य प्रकार की होती है, क्योंकि प्रथम समय में जितना द्रव्य का अपकर्षण हुआ है उससे असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण कर उदयावली के बाहर गलित शेष आयाम रूप से उसका निक्षेप करते हैं। गलित शेष का अर्थ क्या है? पहले ये जो उदयावली के बाहर निक्षेप आता है यानी उसकी जो उसको दिया जाता है, दूसरे समय में क्या होगा? ये तो उदयावली में जुड़ जाएगा और वहाँ का जो ऑलरेडी था यहाँ निषेक, ये उदयावली में प्रवेश हो गया, अभी इसमें वो असंख्यात गुना दिया जाएगा, ये असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना, ये दूसरे समय में ऐसा हो जाएगा दोनों पर, और ये इसका एक निषेक उदयावली में आ जाएगा।
उसपे भी
और रिमेनिंग निषेकों में क्योंकि गलित है ना तो एक एक समय उसका कम होता चला जाएगा। इसलिए गुणश्रेणी निक्षेप में ही थोड़ी विशेषता है विशेषण यह तो पहले ही बतलाया है कि गुणश्रेणी आयाम अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से कुछ अधिक काल प्रमाण है। यतः यह गलितावशेष गुणश्रेणी है अतः दूसरे समय उसके आयाम में एक समय की कमी हो जाती है। ये बात ख्याल में आई उसका एक समय उदयावली में चला जाएगा और ऊपर तो बढ़ेगी नहीं उसका आयाम तो वो कम हो जाएगी यानी एक निषेक कम हुआ और द्रव्य असंख्यात गुण आया है अब उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उदय वो तो नीचे आते आते उदय रूप से भी असंख्यात गुणा समय पर बचे चले जाते
नहीं देगा
उदयावली में नहीं
देगा
उदयावली में जो डायरेक्ट आएगा अपकर्षण होके वो अलग वो अलग हाँ अपकर्षण किया हुआ उदयावली में भी जाता है डायरेक्ट गुणश्रेणी में भी जाता है ऊपर भी जाता है। यह गुणश्रेणी की बात मुख्यतः से बता रहे हैं इसी प्रकार आगे भी उसके आयाम में एक एक समय की कमी तब तक जानना चाहिए जब तक उसकी रचना होती रहती है। जब तक गुणश्रेणी रूप से रचना होगी तब तक उसके एक एक समय उसमें क्षीण हो जाएगा। साथ ही प्रथम समय में गुणश्रेणी आयाम में जितने द्रव्य का निक्षेप होता है उससे असंख्यात गुणे द्रव्य का निक्षेप उसमें दूसरे समय में होता है। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक समय में असंख्यात गुणे द्रव्य का निक्षेप गुणश्रेणी रचना के अंतिम समय तक जानना चाहिए। यानी यहाँ कितना सारा क्षपणा का कार्य चलता है यानी फिरने का क्षपणा तो एक क्षय होने का कार्य तो दर्शन होने में हो रहा है अन्य कर्मों की भी इतनी निर्जरा हो रही है। एवं अंतमोत्तम जाव अनुभाग खंडयम पुण्यम पुण्यम में पूर्ण होता है। इस प्रकार एक अनुभाग कांडक के पूर्ण अर्थात व्यतीत होने के अंतर्मुहूर्त काल तक जानना चाहिए। इस प्रकार दूसरे समय की निंदाधिकता से रहित इस प्ररूपणा को अंतर्मुहूर्त काल ऊपर जाकर प्रथम अनुभाग कांडक के समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। उसके समाप्त होने पर कुछ भी रहे अनुभाग कांडक तो समाप्त हुआ किसी कांडक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ वो तो वही का वही चल रहा है पहला अनुभाग कांडक दूसरा चालू हो जाएगा स्थिति कांडक वही चलेगा स्थिति बंध वही चलेगा क्योंकि उसके एक स्थिति कांडक और स्थिति बंध काल में हजारों अनुभाग कांडक होते हैं तो उसके समाप्त होने पर जो कुछ भेद है यथा वही स्थिति कांडक है वही स्थिति बंध है वही पुरानी उदयावली के बाहर गलितावशेष गुणश्रेणी है परंतु यहाँ से अन्य अनुभाग कांडक का प्रारंभ करता है क्योंकि प्रथम अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल वहाँ समाप्त हो जाता है। यह इस सूत्र का भावार्थ है परंतु प्रथम स्थिति कांडक काल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसका संख्यातवा भाग ही व्यतीत हुआ है। संख्या तेने कितना
हजारोवा
संख्या हजारवा भाग एवं अनुभाग खंडय सहस्तेषु पुण्येषु अन्नम खिरिखंडयम खिरिबंधम अनुभाग खंडयम च पठ्यवी। अब ये ऐसे हजारों होने पर सब नए शुरू हो गए अनुभाग कांडक भी नया शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हजारों अनुभाग कांडकों के पूर्ण होने पर अन्य स्थिति कांडक अन्य स्थिति बंध और अन्य अनुभाग कांडक को आरंभ करता। इस प्रकार इस प्ररूपणा के अनुसार संख्यात हजार अनुभाग कांडकों के समाप्त होने पर उस समय प्रथम स्थिति कांडक प्रथम स्थिति बंध और उस काल में प्रवृत्त अनुभाग कांडक एक साथ समाप्त होते हैं यानी इसका अंतिम कांडक अनुभाग का और बाकी सारे पहले ही चले आ रहे हैं तथा उसी समय अन्य स्थिति कांडक अन्य स्थिति बंध और अन्य अनुभाग कांडक को आरंभ करता है। इस प्रकार यह यहाँ पर इस सूत्र के अर्थ का निश्चय है। अब प्रथम स्थिति कांडक के आयाम से दूसरे स्थिति कांडक का आयाम, आयाम है लंबाई, सदृश होता है या विसदृश होता है, ऐसी आशंका करके उससे उसकी विशेष हीनता की सिद्धि करने के लिए अल्प बहुत्व प्रबंध को कहते हैं। यहाँ कहते हैं परमम स्थितिखंडयम बहुवम, द्वितीयम स्थितिखंडयम विशेषहीनम, तदीयम स्थितिखंडयम विशेषहीनम। आगे आगे के स्थितिकांडक विशेषहीन होते चले जाते हैं। प्रथम स्थितिकांडक बहुत है, उससे दूसरा स्थितिकांडक विशेषहीन है। जब कांडक कहते हैं तो उसका आयाम लेना है, एक कांडक में निषेकों का प्रमाण। उससे तीसरा स्थितिकांडक विशेषहीन है, उसका काल थोड़ा होगा वो तो बात अलग, यहाँ तो कांडक का प्रमाण कितना है उसकी बात चल रही है। इस प्रकार इन स्थिति कांडकों की अनंतर पूर्व अनंतर पूर्व स्थिति कांडक को देखते हुए विशेष हीन रूप से प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर विशेष हानि लाने के लिए भागहार संख्यातंक प्रमाण ग्रहण करना चाहिए, यानी संख्या से भाग प्रमाण हानि होती चली जाए। इस प्रकार उत्तरोत्तर विशेष हानि के क्रम से स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अपूर्वकरण के कितने ही भाग को बिताकर प्रथम स्थिति कांडक से संख्यात गुणाहीन भी स्थिति कांडक होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। हर बार थोड़ा 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 घट गया, मान लेते हैं थोड़ा यानी कितना, दसवां भाग घटेगा, तो दस बार दसवां भाग घटेगा तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा ना, जितने प्रमाण उसका घटेगा तो आधा प्रमाण हो जाएगा। आगे का सूत्र ऊपर पढ़ेंगे। एवं परमादो स्थितिखंडयादो अंतो अपूर्वकरणाध्याये संख्यज्य गुणहीनम् सी अस्ति। इस प्रकार प्रथम स्थिति कांडक से अपूर्वकरण काल के भीतर संख्यात गुणाहीन भी स्थिति कांडक होता है। यहाँ पर अपूर्वकरण काल के भीतर ऐसा कहने पर अपूर्वकरण के अंतिम समय को न प्राप्त कर पहले ही उसके काल के भीतर प्रथम स्थितिकांडक से संख्यात गुणाहीन स्थितिकांडक उपलब्ध होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अपूर्वकरण के काल में संख्यात स्थितिकांडक गुणहानियां उपलब्ध होती है। क्या कहा,
गुणित प्रमाण हानि संख्या से
स्थिति कांडक गुणहानिया का अर्थ क्या है, स्थिति कांडक का जितना प्रमाण है वो आधा हो जाना, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से कितनी बार होगी, संख्यात बार होगी। इस प्रकार इस विधान से जिनका प्रारंभ और समाप्ति स्थितिबंध के काल के समान है, यानी जिस समय नया स्थितिबंध होता है उसी समय नया स्थिति कांडक शुरू होता है, तो कहते प्रारंभ एक साथ हुआ और जितना काल स्थितिबंध के लिए लगता है उतना ही काल एक स्थिति कांडक के घात लगता है, तो उसको कहते उसकी समाप्ति भी एक साथ है। तो जिनका प्रारंभ और समाप्ति स्थितिबंध के काल के समान है और जिनमें से प्रत्येक हजारों अनुभाग कांडकों का अविनाभावी है, ऐसे हजारों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने का क्या कहना चाहते हैं। एक कांडक के लिए जितना काल लगता है उतना ही एक स्थितिबंध लगातार होता है, उतने ही काल में हजारों अनुभाग कांडक बनते हैं, तो ऐसा एक एक स्थिति कांडक घात होते होते हजारों स्थिति कांडक घात हो जाते हैं। ये बात बताए ना, ऐसे हजारों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर तदनंतर अपूर्वकरण काल के अंतिम समय को यह जीव प्राप्त करता है, इस बात के कथन के लिए आगे का सूत्र का अवतार है। ये बात चल रही है ना? हाँ, एक एक में इसी काल में बीच में नहीं, स्थितिकांड घात लगातार चल रहे अंतर्मुतक, एक कांडक पूरा होता है दूसरे समय से दूसरा कांडक चालू हो जाता है। स्थिति कांडक ओवरलैप नहीं है, एक स्थिति कांडक, ये एक अंतर्मुहूर्त में इतना कांडक हुआ, दूसरे अंतर्मुहूर्त में हुआ, तीसरे अंतर्मुहूर्त में, चौथे अंतर्मुहूर्त में, अब उसी समय यहाँ स्पर्धकों में अनुभागों में क्या हो रहा है, अनुभाग में भी कांडक कांडक हो रहा है। तो जब एक स्थिति कांडक पूरा होता है उतने काल में हजारों अनुभाग कांडक होते हैं, हजारों बार अनुभाग कांडक आते हैं। तो इसमें एक होगा, इसमें हजार तो अनुभाग कांडक हुए, इसमें फिर और हजार हुए, इसमें फिर हजार हुए,
हजार गुना
हजार यानी हजारों होते हैं, वैसे 10,000 भी कह सकते थे। दूसरे में हजारों, तीसरे में हजारों, चौथे में हजारों, क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ स्थिति का कांडक हो रहा है, दूसरे बाजू अनुभाग का कांडक भी हो रहा है, एट ए टाइम दोनों बातें चल रही हैं। साइमल्टेनियस हो रहा है, परंतु अनुभाग कांडक होने के लिए काल बहुत कम लगता है। एक तक कैसे होगा? नहीं, दूसरा तभी कहते ना जब पहला पूरा होगा। हाँ, अभी नहीं कंफ्यूज। काल समान, जब एक लगातार स्थिति कांड की फालियां गिर रही है उतने समय तक उतना का उतना स्थिति बंद होता है, उसको कहते काल की समान। जब नया स्थिति कांड घात शुरू होगा, पहली फाली गिरना, तो यहाँ घटकर नया स्थिति बंद होने की शुरुआत होगी। यहाँ लिखा ना एदेन कमेन हिरिखंडय सहस्यहिम बहुयहिम गदेहि अपूर्व करणाध्याय चरिम समयम पत्तो। इस क्रम से अनेक हजारों लिखा, स्थितिकांडकों के व्यतीत होने पर हिरिखंड सहस्य बहुयहिम गदेहि, ये वो भी हजारों भी अनेक बार गए, तब अपूर्व करण के काल के अंतिम समय को प्राप्त हुआ। यानी अपूर्वकरण में यही कार्य चलता है। यह सूत्र गतार्थ है। तथ अनुभाग खंडय उत्कीर्ण कालो, स्थिति खंडय उत्कीर्ण कालो, स्थितिबंध कालो च समगम समत्तो। वहां अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल, स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थितिबंध काल एक साथ समाप्त होते हैं। अपूर्वकरण के अंतिम समय में लास्ट वाला अनुभाग कांडक, वो तो उसका काल छोटा है, फिर भी वो जो समाप्त होने का समय एक स्थिति कांडक और स्थितिबंध, ये सभी उसी पॉइंट पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण से नया स्थिति कांडक होगा, नया स्थितिबंध होगा, नया अनुभाग कांडक होगा, तो इसकी समाप्ति यहाँ पर होगी, एक साथ समाप्त होगी। यह सूत्र भी गतार्थ है। विशेषांश पढ़े क्या? तो इसका विषय हो जाएगा कंप्लीट, नया विषय शुरू होगा। विशेषांश, यहाँ उक्त सब कथन का तात्पर्य यह है कि अपूर्वकरण के प्रथम स्थिति कांडक का जितना आयाम है उससे दूसरे का विशेष ही नहीं, तीसरे का विशेष ही नहीं, यह क्रम अपूर्वकरण के अंतिम स्थिति कांडक के प्राप्त होने तक जानना चाहिए। किंतु इस प्रकार प्रथम स्थिति कांडक के आयाम की अपेक्षा आगे के स्थिति कांडकों के आयाम को देखा जाए तो अपूर्वकरण के काल के भीतर ही मध्य के स्थिति कांडक का आयाम प्रथम स्थिति कांडक के आयाम से संख्यात गुना हीन हो जाता है। यानी संख्यात वे भाग प्रमाण
बाकी
आधा रहेगा, चौथा भाग रहेगा, दसवा भाग रहेगा। और इस प्रकार अपूर्वकरण के समस्त काल के भीतर संख्यात स्थितिकांडक गुणहानियां प्राप्त हो जाती है। एक गुणहानि तब कहते जब आधा होता है, आधा फिर आधे से आधे, आधे से आधे, ऐसे अनेक गुणहानियां वहां होगी। यह तो एक विशेषता हुई। दूसरी विशेषता यह है, यहाँ सर्वत्र प्रत्येक स्थितिकांडक का काल और स्थितिबंध का काल समान होता है। इसका तात्पर्य यही है, अपूर्वकरण में जितने स्थितिकांडक घात होते हैं उतने ही स्थितिबंधापसरण भी होते हैं, क्योंकि दोनों का काल समान है। तीसरी विशेषता यह है, एक एक स्थितिकांडक घात के काल में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं। चौथी विशेषता यह है, अपूर्वकरण के काल के समाप्त होने के साथ वहाँ प्राप्त अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल, यानी अनुभाग कांडक होने के लिए जितना काल लगता है उसको स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल, स्थितिबंध काल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। अब यहाँ जो नई जो प्ररूपना चलेगी, अपूर्वकरण में स्थितिकांडक आदि की प्ररूपना समाप्त करके अब वहीं पर स्थिति सत्कर्मगत विशेषता का कथन करने के लिए सूत्र कहेंगे, जो हम कल देखेंगे। यानी वहाँ स्थिति कितनी रह जाती है उसकी बात चलता है। जावानी के ज्ञान से सुझे लो पालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देव।